أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم نے جو کتاب میرے پاس ہے اس میں پیج نمبر 110 یا 9 سے ہم نے شروع کیا تھا, جس میں انسان کی ہم نے انسان کامل کی جو ہے چار اصل میں سفر کا تذکرہ کیا. یہ سفر اصل میں یہ جو چار سفر ہیں علماء اخلاق و عرفان کی نگاہ میں اور ان کی تفسیر اور تشریح کے حساب سے کہ انسان ظاہر ہے بیک گراؤنڈ پہ قرآنی تعلیمات ہیں, انسان کا سفر جو ہے وہ خود سے شروع کرتا ہے خدا کی جانب. اگر خدا کا قرب حاصل کرے تو پھر انسان کا جو سفر ہے وہ خدا کے ساتھ رہتا ہے, یعنی خدا کی مزید معرفت اور پہچان کے لیے. پھر وہاں پر وہ رہتا نہیں ہے, جیسے کہ صوفی کہتے ہیں فنا فی اللہ کی ایک خاص معنی رکھتے ہیں, وہاں سے وہ خلق خدا کی طرف آتا ہے. اور پھر جو ہے قرب خدا کے ساتھ خلق خدا کے درمیان جو ہے وہ خدا کے بندوں کا ایک نجات دہندہ بن کر آ جاتا ہے, اللہ کا ایک ایسا بندہ جو ایک وقت میں خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے بطور کامل, اور دوسری طرف خلق خدا کی نجات کے لیے ایک نجات دہندہ بن کر آیا ہے. جیسے کہ اس کو ہم بہت سی جو ہے ہماری معصوم و غیر معصوم شخصیات میں دیکھ سکتے ہیں. معصوم میں ظاہر ہے عصمت کے اپنے اس لیول پر, غیر معصوم میں انسانی جو اشرفیت ہے اس کے لیول کو پیش نظر رکھ کر ہم نے یہ تھوڑی سی ڈسکس پہلے کیا. اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو ہے کچھ ایسی چیزیں آ گئیں کیونکہ مناسبت آ رہی تھی شہید جو گفتگو کر رہے تھے شہید مطہری, تو وہ 21 رمضان کی غالباً مناسبت تھی, تو ایام شہادت تھے, تو کچھ تاریخی جو ہے واقعات بیان کیے اور شخصیت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائی اور اس سے کچھ مثالیں دے دی, اور ماہ رمضان کے حوالے سے فضیلت بیان کر رہے ہیں جس میں پیغمبر گرامی اسلام کے بارے میں فرماتے ہیں, کیونکہ ماہ رمضان اب ہم بالکل قریب ہیں, رجب بھی ہمارے بالکل آستانے پہ, تو فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول سوتے نہیں تھے, بستر کلوز کرتے تھے اور عبادات و ان میں مصروف ہو جاتے تھے, زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے خدا سے خدا کی عبادت میں جو ہے مصروف رکھتے تھے. اس کے ساتھ ایک جو اہم پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ عبادات فردی یا شخصی عبادات کی طرف زیادہ توجہ پیدا کر لیتے ہیں, لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے اجتماعی جو فرائض اور عبادات ہیں وہ بھی تو انسان کو کمال کی طرف, صرف نماز شب انسان کو کمال کی طرف تو نہیں پہنچاتی ہے. اگر صرف اور صرف نماز شب نے ہی کمال کو پہنچانا تھا تو اس کو واجب قرار دیتا, ہمارے لیے فرض قرار دیا جاتا, یا کوئی اور پہلو سے باقی فرائض بیان ہی نہ ہوتے. تو ایک چیز جو ہے نماز شب ہے, جب خدا کی تنہائی کے میں انسان جو ہے اپنی تنہائی میں خدا کے ساتھ لو لگاتا ہے اور رات کو اٹھتا ہے اور ایک وغیرہ وغیرہ ہے, لیکن اور بھی بہت سارے ایسے ہیں. ایک ضرورت مند کی مدد کر کے جو انسان روحانی تسکین پاتا ہے, آج کل کی جو ہماری جدید جو سائیکاٹرسٹ جو ہوتے ہیں یا جو سائیکالوجی پڑھتے ہیں وہ بھی ایک اس حوالے سے, ابھی ریسنٹلی میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ اس میں کہہ رہے تھے کہ کسی کی مدد کرنے کے بعد انسان روحانی ایک تسکین اور سکون کا احساس کرتا ہے, تو اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا چیزیں ہیں, تو وہ بہت ساری اپنے لحاظ سے وہ ڈسکس کر رہے تھے. مثالیں دے دی ہیں قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے, جو ایک آیت میں یہ تمام جو اجتماعی اور انفرادی ترقی کے عبادتیں ہیں ان کو ذکر کیا ہے. محمد اللہ کے رسول ہیں, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں, تو یہ اس کا سماجی اور سوشل اور پولیٹیکل پہلو ہے. تو ان کو دیکھیے گا کہ خدا کے سامنے جھکے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں, انفرادی عبادیات کی طرف اور شخصی عبادات آ گئے, خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں, یعنی سارے کاموں میں اجتماعی کام ہو یا انفرادی کام ہو اس میں وہ خدا کو پیش نظر رکھتے ہیں, بہت زیادہ سجدے کرنے والے ہیں اور کثرت سجود سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہیں, اور ان کے یہ جو صفات ہیں اجتماعی اور شخصی حوالے سے یہ انجیل میں بھی ہم نے گزشتہ کتابوں میں ذکر کیا ہے, वगैरह वगैरह, ये जो सूरह फतह की आयत नंबर 29 को जो है इसके अंदर बयान किया है। और भी मिसालें देते हैं और भी कुरान मजीद की आयत के जरिए से समझाने की जो है कोशिश करते हैं, इज्तिमाई पहलू को भी इंफरादी पहलू को। मसलन सूरह सफ़ की आयत नंबर 4 बयान करते हैं जिसका तर्जमा है, खुदा तो उन लोगों से उल्फत रखता है यानी मोहब्बत रखता है जो उसकी राह में इस तरह पर मसलन भांग कर लड़ते हैं गोया वो सीसा पिलाई दीवार हो। बुनियान उन मरसूस कुरान ने लफ्ज इस्तेमाल किया, सीसा पिलाई हुई दीवार, एक ऐसी दीवार जो कि आसानी से पिघलती नहीं है, गिरती नहीं है, डटी रहती है। जैसे जो है फर्ज करें कि जो सर्द सिकंदरी भी कहते हैं जिसको, या जो है याजूज माजूज के लिए जो दीवार बांधी गई है। अच्छा, इस तरीके से ये क्या है, असल में ईमान वालों की अलामतें हैं। अब ये कौन सी अलामत है, सीसा पिलाई दीवार राह खुदा में दुश्मन खुदा के मुकाबले में, ये इज्तिमाई है, उसकी इज्तिमाई सियासी पहलू से है। इसलिए इमाम खुमैनी के वसीयतनामे का टाइटल रखा था इबादी सियासी वसीयतनामा। मुझे याद है तुर्की के एक राइटर थे जो एक फारसी अखबार के लिए लिखते थे, उनसे बातचीत होती तो वो कहते मेरी समझ में नहीं आता है इलाही सियासी का क्या मतलब होता है। मैंने कहा कि आप थोड़ा सा कुरान पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सियासत में इलाहियत है, इलाहियत में सियासत है, समाजियात में इलाहियत है, इलाहियत में समाजियात है, इनफरादी है, शख्सी है, जाती है, ये आपस में जुड़ी हुई हैं चीजें, अलग थलग नहीं है। मैदान कारजार का मतलब ये नहीं है कि वहां मैदान सजदा व इबादत नहीं है, खुदा को जो है इस पहलू से अनदेखा किया जाए। जैसे कि वो एक इश्तिहाद का मामला आया है जिसको हमने पहले डिस्कस किया है, या आखिरुल अमल को हटाने के हवाले से जो एक कंसेप्ट उसके जहन में आया, उसके बैकग्राउंड में क्या था। बाकी जितनी इसके अंदर गुफ्तगु है वो इसी पहलू को लेकर है जिसका एक खुलासा ये है कि इस्लामी तालीमात में तमाम अहकाम एक दूसरे के जो है अपोजिट में नहीं खड़े होते। हम कहें जी अगर आपने नमाज पढ़नी है तो आप नमाजी आदमी हैं, इसका मतलब ये है कि आप सियासी आदमी नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि आप सोशल नहीं हो सकते क्योंकि आप बड़े परहेजगार आदमी हैं, आप मुत्तकी हैं, आप मुस्तहब रोजे रखते हैं, आप नमाजें पढ़ने वालों में से हैं, कुरान की तिलावतें कर, आपका सोशल कामों से क्या लेना देना, आपका वेलफेयर कामों से क्या लेना देना, आपका पॉलिटिकल कामों से, ये ऐसा कंट्रडिक्शन नहीं है। एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, एक बात एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं, दो बातें। अच्छा, ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि ये सारी सिफात का इंसान कामिल में इक्वल तरीके से कम होना जरूरी है। इस सारे सेक्टर्स के अंदर इंसान कामिल परफॉर्म कर रहा होता है। हम परहेजगार की डिफिनेशन, अफसोस ये है कि यही डिफिनेशन लोगों के जहन में बैठ गई है, डिफिनेशन देते वक्त फौरन जो है नमाज शब तिलावत की तरफ ना जाए कि कहे जी नम परहेजगार आदमी वो जो सबसे ज्यादा सोशली एक्टिव है, इन द सेम टाइम वो अपनी वाजिबात शख्सी और इनफरादी के लिए भी बहुत बड़ा जो है उसी तरीके से एक्टिव है जिस तरह सोशल तरीके से एक्टिव है। कोई ये ना समझे कि नमाज जो है जिद्दोजहद को जहाद को रोकती है। आपको मालूम है कि जहाद की जो असल एक्चुअल मानी वो जिद्दोजहद करना है, चाहे जिद्दोजहद बाय वेपन हो, जिद्दोजहद विदाउट वेपन हो। इसीलिए बाय वेपन अगर जिद्दोजहद करें तो असगर छोटी जहाद का है, विदाउट वेपन जो बुराइयों से खुद की बुराइयों से लड़ने को अकबर कहा, बड़ी जहाद कहा है इसीलिए। लेकिन आज क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी मिसयूज हो गई। इसी तरह जो है जहाद नमाज या इज्तिमाई काम इबादत फर्दी या शख्सी के खिलाफ नहीं है, तकवा के खिलाफ नहीं है। जो आदमी पॉलिटिशियन है वो तकवा के खिलाफ वो जरूरी नहीं है, हाँ वो गलत, वो तो नमाज में भी रियाकारी कर सकता है। लिहाजा क्या है, ये सारे के सारे अगर चीजों को हमने बतौर अतम यानी हर सिफत को, इंसान कामिल की हर सिफत को अगर हमने बतौर अकमलो कामिलो अतम देखना है तो ये हमें कहाँ पर नजर आती हैं, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम में नजर आती हैं। और शहीद यहाँ पर एक मिसाल देते हैं क्योंकि रमजान का महीना और शब जरबत के महीने थे, तो मिसाल देते हैं मौला अली अलैहिस्सलाम की। और फिर एक मिसाल देते हैं, मेरे पास जो किताब है उसके पेज नंबर 116 है, उसमें एक मिसाल देते हैं इमाम जमाना जल्लाह तआला फरजहु शरीफ के औसाफ के जो असहाब हैं उनके औसाफ क्या हैं, सिफतें उनकी जो क्या क्वालिटीज हैं, क्या खसूसियतें हैं, तो वो एक हदीस बयान करते हैं जो सफीनतुल बिहार में बड़ी मशहूर हदीस है और भी किताबों में है, रात के वक्त राहिब और दिन को शेर होते हैं। अगर आप रात को उनसे मिलने जाएं तो गोया आप एक राहिब से मिलने गए। राहिब क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ इबादत में लगा रहता है। यानी रात को बंदों से मिले तो लगता ऐसा है कि वो इस बंदे का तो काम ही सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ना और इबादत करना है, और दिन के वक्त मिलते हैं तो वो शेर की तरह मालूम होता है। शेर क्या होता है? दिन के वक्त शेर शिकार कर रहा होता है, दिन के वक्त शेर जो है एक्टिव नजर आ रहा होता है। तो ऐसे नहीं है कि जो रात के राहिब हैं तो वो दिन के वक्त जो है बिल्कुल ही आइसोलेटेड तरीके से एक क्वारंटाइन करके खुद को बैठते होंगे, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। क्यों ये इतनी ज्यादा जोर देकर शहीद मिसालें दे रहे हैं? इसकी बुनियादी वजह यह कि उस वक्त का जो ईरानी मुआशरा था, और आम तौर पर यह हर माशरे का और हर मुसलमान का मसला है कि वो एक पहलू पे तवज्जो ज्यादा देता है, दूसरे पहलू की तरफ तवज्जो बिल्कुल भी कम नहीं होता है, बिल्कुल भी तवज्जो उसकी जो है नहीं होती है। इसलिए शहीद बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं जो दीन के अंदर मौजूद है। एक वाकया भी नकल करते हैं एक जवान के बारे में, ये वाकया बड़ा मशहूर है, हमारी किताबों में मौजूद है कि कह रहे हैं कि एक जवान पर नजर पड़ती है, ये क्या कहते हैं, हुजूर पाक और असाब बैठे हैं, एक जवान पर नजर पड़ी जिसकी जो है ना हालत बड़ी गैर मामूली किस्म की थी, लड़खड़ा कर चल रहा था और काफी वीक था और आंखें धसी हुई थी, चेहरे का रंग भी जर्द हो गया था। वो एक जो है आम शख्स की तरह नहीं लग रहा था, गैर मामूली उसकी शक्ल सूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कैफा असबाह था, यानी तुमने सुबह कैसे की, मतलब ये कि तुम कैसे हो, खैरियत से हो। तो उसने जवाब में फरमाया, मैंने इस हालत में सुबह की है कि मैं अहले यकीन में से हूँ। यानी ये बहुत बड़ा जुमला है, मैं अहले यकीन में से हूँ। आप इस जुमले को समझना चाह रहे हैं तो मौला अली अलैहिस्सलाम का वो जुमला जहन में लाइए जो आप सुनते रहते हैं कि मौला ने फरमाया कि लौकुशिफल गिता उलमजत तो यकीना, पर्दे हटे तो कहा मेरे यकीन में कोई इजाफा नहीं होगा, क्योंकि यकीन की लास्ट स्टेज में हूँ, उसके बाद कोई स्टेज है नहीं है। यानी मतलब ये कि पर्दे हों या ना हो मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि पर्दे हटने से मुमकिन है हम लोगों के लिए दूसरों के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, यानी अनबिलीवेबल फर्क पड़ेगा। लेकिन मौला अली इस्लाम कह रहे हैं कि मेरे लिए पर्दे मानी नहीं रखते क्योंकि मैं उससे बहुत आगे हूँ, आखिरी स्टेज पर हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि मैं यकीन में अहले यकीन में से हूँ, इसके अपने हिसाब से, जाहिर है मासूम के लेवल पे नहीं, इसके अपने लेवल पे वो यकीन में है। यानी जो बात आपने अपनी जबान के जरिए से हमारे कानों में डाली है, मैं उसे अपनी बसीरत की आंख से देखता हूँ। ये बहुत बड़ी चीज है कि इंसान कान से सुने और बसीरत की आंख से देखने लग जाए। रसूलुल्लाह सल्लम ने उस जवान के बारे में मजीद गुफ्तगू करना जरूरी समझा और फरमाया कि यानी हर चीज की एक अलामत होती है, और तुम अगर अहले यकीन में से हो कि जैसा कि तुम्हारा दावा है, तो तुम्हारे यकीन की अलामत क्या है? और उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मेरे यकीन की अलामत यह है कि वो दिन को मुझे प्यासा रखता है और रात को जगाए रखता है, यानी बेचैनी में मुब्तला करता है। दिन को मैं उसकी रजा के लिए रोजे रखता हूँ और रात को मैं जागता हूँ, यानी सोने नहीं देता मुझे, यानी इश्क खुदावंदी या मोहब्बत खुदावंदी या जलालत व अजमत इलाही सोने नहीं देती, उसकी नींद को उड़ा देती है, रात को उठ जाता है। उसूल काफी की जिल्द नंबर 2 में है। दिन के वक्त भी इसी तरह है, यानी दिन को रोजे रखना, रात को इबादत करना। आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये चीजें यकीन के लिए काफी हैं, इससे आगे भी कुछ बताओ, मैं तुम्हारे अंदर इससे बढ़कर कोई अलामत देखना चाहता हूँ। इससे क्या मालूम होता है कि हुजूर पाक के इस फरमान से मालूम होता है कि यकीन के स्टेजेस हैं, मरहले हैं, इसमें से आगे भी एक मरहला है। कुछ यकीन के मरहले हम अपनी फहम व फरासत, समझदारी, एक्सपेरिमेंट, तजुर्बा, इन चीज़ों से हासिल कर लेते हैं एक हद तक का यकीन। मसलन बाज़ चीज़ें हमारी महसूसात भी हमें यकीन दिलाती हैं, जैसे आग जलाती है, बर्फ ठंडी होती है, ये यकीन हमें हिस के जरिए से, फिफ्थ सेंस जो हमारे पास है, बाय सेंस हमने यकीन हासिल कर लिया है, इसका जो टूल था वो ये था। इस तरह के यकीन हम में से बहुत सों के पास होते हैं, हम सब रखते हैं, हर इंसान के पास होता है। यहाँ पर जो यकीन है वो उन मरहलों की यकीन की नहीं पूछ रहे हैं अल्लाह के रसूल, जो बाय सेंस और बाय क्या कहते हैं, एनालिसिस हासिल हुए हैं इंसान को, या बाय एक्सपेरिमेंट। یعنی ان یقین کی بات کر رہے ہیں جو ان چیزوں کے ذریعے سے نہیں اس سے آگے وہ چلا گیا ہے. اب وہ جواب کر اس نے عرض کیا, یا رسول اللہ اس وقت جب میں اس دنیا میں ہوں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور وہاں کی آوازیں سن رہا ہوں, چونکہ اس وقت جنت اور جہنم مخلوق ہیں, مخلوق اور موجود ہیں, میں اس وقت اہل جنت اور جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں. یا رسول اللہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دوں کہ ان میں سے کون کون جنتی اور کون کون جہنمی ہیں. اب میں یہاں روک کے تھوڑا سا میں آپ کو اپنے ذاکرین کی کچھ باتیں بتا. مولا علی علیہ السلام کی صفات کے طور پر پیش کرتے ہیں. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے. خوب یہ غیر معصوم نے بھی کو بھی یہ حاصل ہے. ممکن ہے کہ ہمارے بہت سے آج بھی موجود بہت سی شخصیات ایسی ہیں یقیناً جو آئے بہجت وفات پا گئے ہیں, تو انہیں کی مثال دیتے ہیں. امام خمینی رحلت فرما گئے ہیں, انہیں کی مثال دیتے ہیں. یہ بھی جانتے تھے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے, کس کا انجام برا ہے کس کا انجام اچھا نہیں ہے, یہ سمجھتے تھے, یہ ساری چیزوں کو جانتے تھے. یہ بھی اس مقام میں پہنچے ہوئے تھے. مولا علیہ السلام کی شان اس سے اونچی اور اس سے بلند ہے ان پہلو میں. وہ امام معصوم ہیں, ان کا جاننا عصمت کی اور امامت کی ضرورت میں سے ہے کہ وہ جان جائیں. اگر امامت کی ضرورت جاننا ہے تو جاننا ہے اسے, اس سے آگے بھی جاننا ہے. یہ جو آپ بڑی فضائل کے طور پہ پیش کرتے ہیں یہ بہت ہی عام انسان کے لیے بھی یہ چیزیں حاصل ہیں. اور بھی مثالیں یہاں پر فرما رہے ہیں انسان کامل کی, یعنی یہ مثال دے دی ہے اس کی انفرادی اور ذاتی جو حیثیت ہے اس میں جو اس کا کمال ہے وہ اس طرح کا کمال ہے. یہ اصل میں شہید فرمانا چاہتے ہیں. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک اور جوان کے واسطے فرمایا کہ اے جوان تمہاری خواہش کیا ہے, تم کیا آرزو رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ شہادت, خدا کی راہ میں شہادت. یہ اس کی آرزو میں سے. آج بھی ایسے شہادت کے طالب لوگ ہیں, شہیدوں کے وصیت نامے پڑھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے, کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں ہم جیسے جو اسی دنیا میں رہتے ہیں, اسی 21ویں صدی کے اندر رہتے ہیں والے لوگوں کے یہ الفاظ ہیں, یہ جملے ہیں, کیونکہ وہ شہید ہو چکے ہیں اور وہ ایک ایسے یقین کے مرحلے میں ہیں اور یہ باتیں لکھ رہے ہیں. تو ایسے کوئی وہ نہیں لکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی بعد میں بینیفٹ ملے گا. ان کو کیا بینیفٹ ملے گا؟ جو مر کے جا رہا ہے اس نے کیا بینیفٹ لینا ہے؟ جو بینیفٹ, ہاں وہ اس بینیفٹ کے پیچھے جائے گا جو اس طرف اسے حاصل ہو جائے. تو لہٰذا جو ہے دونوں پہلو سے ہمیں بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جو ہے وہ ایک وہی جو ہے بات جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کیا کہ یہ ایک عجیب قسم کی سوچ تھی کہ حی علی خیر العمل کو ہٹا دیا جنگ کے دوران, کیونکہ اس میں فرمایا تھا آؤ عمل خیر کی طرف. تو فرمایا انہوں نے یہ سوچا کہ بھائی دیکھیں عمل خیر کی طرف آنے کی دعوت دیں گے جبکہ اس وقت جنگ میں ہیں, اور جنگ کے دوران اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ جنگ کی طرف توجہ کرنے کے بجائے کیا کریں, وہ دوسرے چیزوں کی طرف چلے جائیں اور اس سے پھر جنگ میں ہماری شکست ہو جائے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی سوچ تھی, جبکہ یہی جو نماز تھی یا حی علی خیر العمل تھا یہ جنگ میں مزید اسے استقامت عطا کرتی ہے, آپس میں جڑے ہوئے ہیں. پھر جو ہے اور چیزوں کو ایڈ کر دیا, صلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے جو ہے بہتر ہے وغیرہ وغیرہ, اس طرح کی جو ہے مختلف قسم کی چیزیں عمر صاحب نے جو ہے ایڈ کر دیا اور سوچا کہ جو ہے اس سے ان کو زیادہ ظاہر ہے دین کی خاطر خدا کی رضا کے لیے لڑنا اور اپنی سلطنت اور اپنی ٹیریٹری اور جغرافیہ کو بڑھانا یہ دو مختلف چیزیں ہیں. اس لیے ہم اللہ کے رسول کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں ہر وہ جنگ جس جنگ میں امام معصوم کی تائید حاصل نہ ہو اس جنگ کو ہم اسلامی جنگ نہیں کہتے, یعنی کشور گشائی کہہ سکتے ہیں اسلامی جنگ نہیں کہہ سکتے, فتوحات کہا جاتا ہے ان کو ٹرمینالوجی عربی میں. فتوحات اور اسلامی جنگوں میں فرق ہے. فتوحات تب شروع ہو گئی اللہ کے رسول کے بعد امام معصوم کی اجازت کے بغیر غیر ضروری طور پر اپنی ٹیریٹری اور جغرافیہ کو بڑھانے کے لیے فتوحات کی گئی. تو ایسی فتوحات جو ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت یا بیک گراؤنڈ نہیں پایا جاتا اس طرح کی فتوحات کا, کہ اس لیے ان فتوحات کے اندر ہم دیکھتے ہیں غیر شرعی کام بہت سارے ہوئے ہیں. من جملہ ان میں سے یہ کہ ان فتوحات کے اندر سوچا گیا کہ حی علی خیر العمل, ایک مسلمان مجاہد جو ہے نا وہ جہاد سے دور ہو سکتا ہے और जाके घर में नमाजें पढ़ने लग जाए और कहे जी मैं तो जो है ना खैर अमल कर रहा हूँ। तो इस किस्म की मनपसंद किस्म की तशरीहात और इश्तिहादात किए गए, क्योंकि फतूहात थी वो इस्लामी जंगों में। तो क्या बदर में इस तरह की कोई सोच आई थी, क्या ओहद में आई, खंदक व खैबर में आई? पैगंबर इस्लाम ने फरमाया हो मौला अली अलैहि सलाम के लिए सूरज पलट के आया, क्योंकि आप जंग में इस कदर मसरूफ रहे कि सूरज जो है गुरूब की तरफ चला गया, वगैरह वगैरह। ये सारी चीजें क्या हैं? ये कंट्रडक्शन होता तो यकीनन उसी वक्त जो है हालात मुख्तलिफ नजर आते। तो ये इसलिए कि जब गैर इस्लामी इकदामात होंगे तो जाहिर है उसके लिए गैर इस्लामी टूल्स भी तराशे जाएंगे, लेकिन क्योंकि लोग मुसलमान हैं तो मुसलमान लोगों को आपने सेटिस्फाई भी करना है। सेटिस्फाई करने के लिए फिर आपको उसे इस्लाम के दायरे के अंदर डालकर करना होगा। अफगानिस्तान से रूस को भगाना है तो आप जहाद का नाम लेंगे, जाहिर है उसके बगैर क्यों, कौन एक मदरसे से एक जवान उठे, कौन बाप तैयार होगा कि अपने बेटे को भेज दे, कौन जवान तैयार होगा कि वो ऐन जवानी में जो है अपनी जान को हथेली पे लेके चला जाए वहां पर। आपको ऐसे लबादे ओढ़ने पड़ेंगे, आपको ऐसे टाइटल यूज करने पड़ेंगे कि जिन टाइटल के बहाने वो मोटिवेट हो जाए और फिर उस तरह की हरकत करे और आप अपनी पॉलिसीज को और अपनी गलत इरादों को पाए तकबील तक पहुंचाएं, अपनी टेरिटरी बढ़ाएं, अपने कब्जे करें, अपनी सियासी जो गैर इंसानी और गैर इस्लामी मकासद हैं उसको हासिल करें। मिसाल देते हैं, अगर इन तमाम चीजों को समझना है तो मौलाए कायनात की शख्सियत है। कह रहे हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की शख्सियत तमाम इंसानी जो आला कदरें हैं वो इमाम अली अलैहिस्सलाम में इकट्ठी हो जाती हैं। मसलन इमाम अली अलैहिस्सलाम की मंतिक जो जंग की मंतिक है, रज़्मिया मंतिक जिसको कहते हैं, ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी वो रज़्म और बज़्म में थे, यानी सारी जिंदगी वो जो है जंग के मैदान में थे। और इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम को कभी हम देखते हैं कि इबादत के मरहले में तो लगता है कि ये हैं ही सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ नमाजें पढ़ने वाले इबादत गुजार इंसानों में से हैं। मिसाल देते हैं 21 रमजान की मुनासिबत से नाजुल बलागा के हवाले से जंग सफीन की मिसाल देते हैं, जो बारहा हमने डिस्कस किया है, जो दरियाए फुरात पर माविया का लश्कर आया और उन्होंने दरियाए फुरात पर पहले कब्जा किया, पानी नहीं दिया वहां पर, पानी पर पाबंदी लगा दी। और उस वक़्त जो है मौला अली सलाम ने काफ़ी कोशिश की कि पानी को नॉर्मल तरीके से मसला हल किया जाए, लेकिन वो क्योंकि पानी को एक जंगी टूल के तौर पे यूज करना चाह रहे थे प्रेशर करने के लिए, जो कि गैर इंसानी तरीका था, उस वक़्त मौला अली सलाम ने एक खुतबा दिया। उस खुतबे की जो अरबी तरकीब है वो इतनी हमासी है कि उसने सुनने के बाद हर इंसान के अंदर एक बिजली दौड़ाई, एक ऐसी जो है ना बिजली कोंद ली उनके अंदर कि वो उठे फिर तलवारें लेकर, देखा नहीं कि क्या होगा। उस खुतबे का उर्दू तर्जुमा यह कि ए लोगों, माविया ने गुमराहों के एक टोले को अपने गिर्द जमा कर लिया है, उन्होंने तुम पर पानी बंद कर दिया है, क्या तुम जानते हो कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने तुम पर पानी बंद कर दिया है। देखना ये रिपीटेड जो तरीका है ये मोटिवेट करने के लिए, लोगों क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें दो रास्तों में से एक का इंतखाब करना चाहिए, वो तुमसे जंग के लुक में के तालिब हैं, तो अब या तो तुम जिल्लत और अपने मकाम की पस्ती और हकारत पर सर तस्लीम में खम कर दो, या अपनी तलवार की प्यास खून से बुझा कर अपनी प्यास पानी से बुझा दो। ये जो जुमले हैं ये एक बिजली की तरह कौंदे हैं और इन जुमलों ने जो है ऐसी हरकत दी कि पलक झपकने में नहर फुरात को जो है मोड़ नहर फुरात पर जाके कब्जा कर लिया। और फिर उसके बाद जो है मौला अली अलैहि सलाम ने जाहिर है कि पानी उनके लिए तो बंद नहीं कर दिया, उनके लिए पानी रख दी। कह रहे कि ये जो मौला अली मैदान जंग में इस तरह के जबरदस्त किस्म की जोश और खरोश की एक खिताबत करते हैं, यही मौला अली अलैहि सलाम को अगर आप जिंदगी हयात और मौत के मरहले में उनकी डिफिनेशन देते हुए देखें तो क्या फरमाते हैं, ए लोगों जिंदगी के क्या मानी है और मौत से क्या मुराद है? क्या जिंदगी के माने जमीन पर चलने खाने पीने सोने के हैं? क्या मौत से मुराद जमीन में दफन हो जाना है? यही हम डिफिनेशन कर लें मौत की, जैसे कि आज जो हमारी मेटेरियलिस्टिक जितने भी लाइफ स्टाइल्स हैं वो उसमें तो यही हमें सिखाते हैं। फरमाते हैं नहीं, तुम्हारा उनसे दब जाना जीते जी मौत है और गालिब आकर मरना जीने के बराबर है। ये क्योंकि मैदान जंग है तो इसलिए जो है एक और अंदाज से बयान किया है मौला अली अलैहि सलाम ने। अब यानी हमें इसमें क्या चीज असल में बयान करना चाह रहे हैं, ये बयान फरमाना चाहते हैं। अशार हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए से मदद लेते हैं और उन्हीं चीज़ों को मुख्तलिफ जावियों से डिस्कस करते हैं और बयान करते हैं। असल में इसके अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ थी और जो चीज़ समझने की, वो ये है कि एक इंसान है कामिल, उसकी तमाम जो सिफात हैं, उसकी इज्तिमाई सियासी इंफरादी शख्सी सिफात बराबर और इक्वल तरीके से ग्रो अप करती हैं, बराबर तरीके से वो अपने अंदर उन चीज़ों को लाता है और कोशिश करता है अगर कोई सिफत कम है, कोई सिफत में कुछ कमी है, छोटी रह गई है, कम रह गई है, उसको अपग्रेड करने की कोशिश करता है। ये इंसान कामिल की सिफात है और हमसे भी मतलूब ये है कि हम जो है तमाम इंसानी सिफात के अंदर खुद को बराबर करने की कोशिश करते रहें, यही बुनियादी जो है हदफ है। फिर इसके अंदर मिसालें और भी दे रहे हैं, दुआए कुमेल से मिसालें देते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की दुआओं से मिसालें देते हैं, फिर दीगर अइमा अलैहिस्सलाम के फरामीन और अहकामात को लेकर जो है बयान करते हैं। क्योंकि कबल इनकलाब ये एक मसला था और आज भी मसला है, नमाज की बेकदरी का जो मसला है उसमें फरमाते हैं, हदीस फरमाते हैं, यानी जो शख्स नमाज को बेकदर समझे उससे हमारी शफात नसीब नहीं होंगी, लन तनालु शफाअतना मन इस्तक़फ़ा सलात, जो है फरमाया कि उसे जो है कभी भी ये हमारी शफात नसीब नहीं होगी। फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम और पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि की हयात तय्यब ताहिर से मुख्तलिफ मिसालें देते हैं और यहाँ तक कि मौला की शहादत का तस्किरा करते हैं और शब ज़रबत का तस्किरा करते हैं, और उसमें फिर आपके जो अल्फाज और इकदामात हैं और उसके साथ मसाइब का भी टच कर रहे हैं थोड़ा सा, और साथ में जो है अपने कातिल के साथ जो आपका रवैया रहा है उस रवैये के हवाले से भी जो है मुख्तलिफ पहलू से थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको आप लोग खुद अगर चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, ज़्यादा इसमें बेहतर होगा क्योंकि इसमें ऐसी अब कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मुनासिबत की वजह से शहीद मुर्तज़ा मुताहरी उस मुनासिबत को ज़्यादा जो है डिस्कस करते हैं और उसी मुनासिबत को लेकर जो है मुख्तलिफ जावियों से जो है गुफ्तगू कर रहे हैं। और यूं हम जो है पांचवी निश्चित है जो मेरे पास किताब है उसका पेज नंबर 138 है, क्योंकि वो पिछली एक पूरी स्पीच थी वो स्पीच ख़त्म हो जाती है और उसमें दोबारा लौट के आते हैं शहीद उस मौजू की तरफ जो कि असल मौजू है और जो डिस्कस कर रहे हैं, और इसका टाइटल है कमाल और अखलाक का राबिता। ये असल में मेन टाइटल है, इस मेन टाइटल 128 के बाद या जो है वन मेरे ख्याल में आपके पास जो किताब होनी चाहिए उसमें, बल्कि 138 या 39 होना है मेरे पास जो किताब है, इसमें असल में शहीद क्या डिस्कस कर रहे हैं, इंसान कामिल को डिस्कस करते हैं और उसके बारे में इंसान कामिल की डिफिनेशन को लेकर जो डिफरेंट किस्म के ख्यालात रखने वाले हैं, स्कूल ऑफ थॉट बन चुके हैं असल में, मकतब यहाँ से मुराद स्कूल ऑफ थॉट है, उस स्कूल ऑफ थॉट के नजरियात पेश करते हैं। क्योंकि इंसान कामिल का जो कंसेप्ट है वो हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो है और उसके बीच में एक बुनियादी पॉइंट रेज कर रहे हैं जो बहुत अहम है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया है लेकिन आगे जाकर इसको डिस्कस करेंगे एक जगह पे जाके, और भी किताबों में ये बड़ा अहम है, उसमें एक जो पॉइंट है वो अखलाक की खुद डिफिनेशंस हैं वो बहुत अहम है। मसलन एक थोड़ा सा जो शुरू का सेंटेंस वो है, कुछ सेंटेंस हैं वो पढ़ना चाहेंगे, फरमाते हैं देखें हर साहिब मकतब शख्स यानी स्कूल ऑफ थॉट रखने वाला इंसान के लिए कोई ना कोई एक ज़ाबिता हयात लाया है, वो इंसान के कमाल या कामिल इंसान के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, वो जिस चीज़ को अखलाक का नाम दिया जाता है, अखलाकियात, क्योंकि यहाँ पर भी है ये अखलाकियात का कॉन्सेप्ट इधर मौजूद है। फिर उसके बारे में कहते हैं कि अखलाक जो है एक इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, ये एक फ़न है, यानी अखलाक का ताल्लुक उससे है जो होना चाहिए, उससे नहीं जो मौजूद है। अच्छा, ये इसके ऊपर आगे जाकर डिस्कस करेंगे کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں اخلاق سے مراد ایسی اچھی صفات ہیں جو انسان میں ہونی چاہیے. بہتر یہی ہے کہ یہ صفتیں رکھتا ہو. اس لیے اگر ایسا ہو تو وہ انسانیت کے بلند مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے. اب مثلا کسی سے سوال کریں کہ جناب انسانیت کا سب سے ہائیسٹ جو پوزیشن ہے وہ کیا چیز ہے, تو کہنے یار اس کے اندر یہ اخلاقی صفات ہیں نا, تو دیٹس مین وہ انسانیت کا ہائیسٹ پوزیشن میں. جیسے آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ انسانیت کی بات کرتے ہیں یہاں پر بھی, تو اس میں ان کی پوچھیں کہ جناب آپ یہ انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غیر انسانی کی ڈیفینیشن کیا ہے, تو وہ ایک کچھ نہ کچھ ڈیفینیشن رکھتے ہیں. اور اس کی ہائیسٹ پوزیشن یا جو آئیڈیل پوزیشن جس کو آپ کہیں یا پرفیکٹ پوزیشن کہیں جس کو, وہ جو ہے وہ بھی ان کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ایک طرح سے موجود ہے. اب آتے ہیں اس میں جو ایک اہم مسئلہ ہے, وہ یہ ہے کہ انسان کامل کے بارے میں جو مختلف ڈیفینیشن رکھتے ہیں وہ مختلف زاویوں سے اس کو اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے. مثلا کچھ لوگ ہیں کہ وہ انسان کو جو اسکول آف تھاٹ ہے ان کے پاس, اس میں ایک آئیڈیل مین یا آئیڈیل پرسن کے بارے میں ایک خاص قسم کی ڈیفینیشن وہ اسکول آف تھاٹ رکھتا ہے, ایک ڈسکرپشن دیتا ہے اور کہتا ہے جی کہ انسان کامل اس اسکول آف تھاٹ کے لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے. اس کی یہ جو ہے نا اس کی ڈسکرپشن ہے, یوں ڈسکرائب کیا ہم نے, یہ اس کی جو ہے مختلف قسم کی صفات اور ایٹریبیوٹس اور مختلف قسم کی اس کے اندر یہ کوالٹیز کا ہونا بہت ضروری ہے. اچھا اب یہ کون سے اسکول آف تھاٹ ہیں, آپ لوگ کنفیوز نہیں ہو جائیے, کیونکہ شہید نے یہاں کچھ کو ڈسکس کیا ہے. شہید کے بعد اب اور اس میں تھیوریز بھی آ چکی ہیں, اگر گنجائش رہی تو آگے ڈسکس کریں گے, نہیں تو ہم زیادہ کھینچیں گے نہیں اس کو. ان میں سے ایک ہے ریشنلزم یا مکتب عقل, عقل کا اسکول آف تھاٹ. وہ ایک اپنی ڈیفینیشن رکھتا ہے عقل کا اسکول آف تھاٹ جو ہے. وہ کہتا ہے دیکھیں انسان میں جو ایک سب سے ہائیسٹ صفت ہے اور اس کی صلاحیت ہے وہ عقل ہے. عقل جو ہے مین جو ہے جوہر ہے انسان کے اندر. لہذا جو ہے ایک انسان کامل کی جو ڈیفینیشن ہوگی وہ عقل ہی دے دے گا. بہت پرانے زمانے سے فلاسفر جو ہیں ان میں بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ انسان کا جو مین جوہر ہے اس کی عقل ہے, اور انسان وہ ہے جو سوچتا ہے نہ کہ دیکھنے والا یا تصور کرنے والا ہے. بس جو ہے کمال انسان کس چیز میں موجود ہے, تو حکمت میں ہے. حکمت کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں. شارٹلی ابھی سمجھنے کے لیے ہم کہیں جو جس کی عقل مندی زیادہ ہو, جس میں فلاسفیکل جو ہے چیزیں اس میں زیادہ ہوں. حکمت کیونکہ ڈیوائڈ کی جاتی ہے تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل حکمت میں. اب یہ تھیوریٹیکل پریکٹیکل حکمت آگے شہید ڈسکس بھی کریں گے, میں شارٹلی تھوڑا سا بعض چیزیں صرف بیان کرتا ہوں. کیونکہ فلاسفرز یا حکمت والے یا ریشنلسٹ یا عقل پرست یا عقل کو سپیریئر سمجھنے والوں کا خیال یہ ہے کہ عقل پوری دنیا کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتی ہے, پوری یونیورس کو انکلوڈنگ ہیومن انڈرسٹینڈ کرنے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہیومن کے پاس ہے وہ عقل ہے. لہذا جو ہے انسان کامل کی بھی جو ڈیفینیشن عقل دے دے گی وہ جو ہے بالکل صحیح اور درست اور ایکوریٹ ہونی چاہیے اس کو. لہذا ہم کیا کریں, جب بھی انسان کامل کی ڈیفینیشن ہم لینے چلے جائیں تو ہم صرف عقل سے پوچھیں اور عقل کو کہیں جناب آپ جو ہے مہربانی کریں کہ آپ ہمیں ڈیفائن کر دیں کہ وٹ مین از انسان کامل یا پرفیکٹ مین. سو ہم جو ہے پرفیکٹ مین ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ڈسکرائب کر کے دیں. یہ جو ہے ایک مین جو ہے اس کے اندر عقل کی جو ہے مین جو تھیوری ہے. اچھا دلچسپ بات یہ ہے ہم اس کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, شہید بھی ڈسکس کریں گے آگے, لیکن پہلے تھوڑی سی جو ہے عقل پر بھروسہ رکھنے والے اور اعتماد کرنے والے जो लोग हैं उनकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री को हम थोड़ा सा अगर देख लें तो आप हैरान होंगे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अक्ल की समझ बूझ को या अक्ल के इंकिशाफात को या अंडरस्टैंडिंग के खिलाफ है, खासकर रिलीजियस मैटर के अंदर, रिलीजियस मसाइल के अंदर, मजहबी मसाइल। सबसे बड़ी मिसाल इसकी दुनिया ईसाइत है, वो ईमानी मामलात में अक्ल को बर्दाश्त ही नहीं करते, स्टिल अभी भी है, हालांकि उसी अकल को इस्तेमाल करके बहुत सी चीजें वो कर लेते हैं, लेकिन जो है वो नहीं एक्सेप्ट करते ईमानी मामलात में अकल के अमल दखल को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, और भी लोग हैं जी, हमारे हिस्टोरिकली अहल तशी में भी एक ऐसी सोच रही है और कम बेश वो आज मॉडर्नाइज हो गई है, लेकिन खुद क्योंकि आप उनके पास इल्म नहीं रहा है और अक्सर इस सोच को फॉलो करने वाले ज्यादा हाईली एजुकेटेड नहीं होते रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको खुद अंडरस्टैंडिंग वो कर लें या ना कर लें अलग बात है, लेकिन बातें उनकी वही होती हैं। और ये अखबारी है, जिनको हम अखबारी कहते हैं, जिनका मॉडर्न जो शक्ल है वो मलंगियत है, उर्दू पाकिस्तान और इंडिया और साउथ एशिया, मलंगियत जिसको हम कहते हैं, जिसकी अगर थोड़ा सा और आगे जाना चाहें मजीद, तो ये जो जिनको बरतानवी शिया के टाइटल दिया है शिराजी ग्रुप, और ये है ये लोग हैं याकल के मुखालिफ, वो खुद को न कहें अभी मॉडर्नाइज हो गए, इनके अंदर भी कैटेगरीज हैं, इनके अंदर भी सोचे हैं, वो एक अलग, हम उस पर पीछे नहीं पड़ जाते। अच्छा, दूसरा इनके मुखालिफ कौन है अहले सुन्नत दुनिया में? अहले हदीस। अहले हदीस अकल के इदराकात और अकल के इंकिशाफात और अंडरस्टैंडिंग और चीजों को डिस्कवर करने के मामलात को खासकर दीनी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आते हैं तो उसके डिनाई करते हैं, बहुत हद तक कहते हैं ठीक है ये चीजें एज ए टूल ठीक है, एज ए टूल ठीक है, लेकिन ये अकल की कोई वो नहीं। अच्छा, और कौन लोग हैं? और वो लोग हैं जो अशराकी, जिनको कहा जाता है अशराकी और सूफी, और अफा जहां लफ्ज आया है तर्जुमा हुआ है उर्दू में भी और फारसी में भी यही है, और फारसी मुराद वो जो सूफिस्ट हैं, सूफी जो नजरियात रखने वाले हैं उनकी बात हो रही है, न कि जो है वो जो हकीकी इरफान है उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि सूफियों की शहीद मिसालें भी पेश करते हैं यहाँ पर, मसलन मुख्तलिफ किस्म की फिलोसफर्स के नजरियात पेश करते हैं, कदीम फलसफी कहा करते थे अकली दुनिया के इंसान का ऐनी दुनिया के मुताबिक यानी हकीकी वाकई दुनिया के मुताबिक होना इस बात का सबब बनता है कि वो खुद इस दुनिया के मुकाबले में एक और दुनिया बन जाता है, ये फिलोसफिकल डायलॉग्स हैं। फिर पोइट्री यहाँ पर बयान किया है, तो क्योंकि फारसी पोइट्री है तो मैं चाहूंगा कि आप लोगों को उर्दू पोइट्री की तरफ, पहले थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुका हूँ लेकिन मैंने देखा कि ये बातें अभी बहुत ज्यादा गाढ़ी बातें हैं तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन अब टाइम है कि इसको डिस्कस किया जाना चाहिए, मैं आज थोड़ा सा कर लेता हूँ। अलामा इकबाल की पोइट्री को उठाएं, उसके अंदर अकल और इशराकियत की जंग नजर आएगी आपको। इशराकियत से मुराद क्या है? इशराक फलसफे, इशराक इशराकियत असल में कहते हैं शुहूद, शुहूद और कशफ को, यानी जो कशफियात, सूफी क्योंकि कशफियात के कायल है ना, सिर्फ कहते हैं वाहिद टूल जो है वो कशफ होना है, पर्दा हट जाना है, चश्मे बरज़खी खुलना है, और हमारे बाज़ उलमा के बाज़ अखलाकी दुरुस्त सुनकर बाज़ औक़ात बाज़ हमारी यूथ बड़ी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो उस पहलू को ज्यादा जोर देते हैं और ठीक करते हैं, सही करते हैं, तो उससे फिर कंफ्यूजन होती है आम आदमी के दरमियान बाज़ औक़ात की, भाई फिर इसका मतलब तो यह है कि हमारे पास कश्फ नहीं हुआ है, हमारी चश्मे बरज़खी नहीं खुली है, दिस मीन वी आर नॉट ए ट्रू मोमिन, तो ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। बहरहाल तो इशराकी जो कशफियात और शुहूद के कायल लोग हैं और वो कहते हैं असल चीजों की हकीकतों को डिस्कवर शुहूद के जरिए हो सकती है, कायनात के बारे में, अल्लाह की जात के बारे में, सिफातुल्लाह के बारे में, हयात बाद अज़ मौत के बारे में और बहुत सारी रिलेटेड चीजों के बारे में, कहते हैं वो शुहूद और कशफ से होता है, सूफी ये कहता है या बिगड़ी इरफान ये कहती है, और लिहाजा कहता है अकल क्या है? अकल तो रुकावट है, अब देखें अलामा इकबाल की शायरी को उठाकर देखें, बांगे दरा, भाले जिब्रील, इन सबको देखें, और भी जो है हमारे गालिब साहब की भी हैं, और भी अशारों के अंदर, हत्ता इवन हमारी मजहबी या शायरी में भी बाज़ औक़ात ऐसे अशार कह देते हैं बाज़ लोग। हम लोगों को तो तकलीफ होती है सुनते हुए, क्योंकि हमें तकलीफ इसलिए नहीं होती कि उसने शेर क्यों कहा, तकलीफ इसलिए होती कि पब्लिक कहें गलत ना समझे इसको, क्योंकि ये अकलानियत की नफी कर रहा है और गलत तरीके से नफी कर रहा है, बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाया है। खताबत में भी ये चीजें बाज़ औक़ात आ जाती हैं। अब वो क्या है, मसलन अलामा इकबाल साहब कहते हैं जी, अच्छा है दिल के साथ रहे पासबां अकल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे। दिल यानी वही शराकियत, सूफियत, शहूदियत, कशफियत, रूह को एज एग्जाम्पल, रूह के लिए दिल का लफ्ज यूज करते हैं ये लोग बाज़ औक़ात। या कहते हैं कि हर खाकी और नूरी पे हुकूमत खरत की, बाहर नहीं कुछ अक्ल खुदादाद इज्जत से, आलम है गुलाम इसके जलाल अजली का, एक दिल है कि हर लहजा उलझता है खरत से, उलझता है खरत यानी अकल, दिल यानी रूह यानी कशफियात, वही शहूद, कहते ये आपस में हमेशा उलझते रहते हैं। ये पूरी एक डिबेट है, पूरी सदियां हमारी मुस्लिम दुनिया के ऊपर रही हैं और स्टिल हमारे साउथ एशिया में अब भी मौजूद, अभी भी है। खासकर जो हमारे मदीना चैनल वाले हैं, माजरत के साथ मैं नाम ले रहा हूं, और इस तरह के बाज लोग हैं, यहाँ भी कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरा उठना बैठना है, वो जो है यही मसलन कहते हैं जी कि अकल को तो छोड़ देना जी, ये तो रुकावट खड़ी कर देता है, कश्फ होने नहीं देता, ये अकली कलाबाजियों में उलझा के रखता है। यानी शायरों के शायरी के अंदर ये जो बाज कहते हैं, मसलन कहता है कि कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इश्क यानी वही इशराकियत, अक्ल है महवे तमाशा लबे बाम, अभी अकल अभी जो है ना हिसाब किताब और कैलकुलेशन में खड़ा बैठा हुआ है, वो इश्क ने छलांग मार दिया, इश्क ने कूद लिया। पॉजिटिव मीनिंग में सही है ये, लेकिन इसकी डिफिनेशन चाहिए, आप क्या कहना चाहते हैं इससे, किस अकल की बात कर रहे हैं? अकल अय्यार है सो बेस बदल देती है अकल की बात कर रहे हैं, या उस अकल की बात कर रहे हैं जो नबी वातिन है, अल-आक़िल मा उबिदु बिहर रहमान वक्तसिबु बिहर जनान है, वो अकल वो है जो रहमान तक पहुंचाता है, उसको अकलमंद कहा है, या वो अकल जो अकल अय्यार है सो बेस बदल देती है, अलामा इकबाल के अशआर हैं सारे, मुझे याद थे अभी तक याद है, तो ये उनकी बात कर रहे हैं आप, वो जो आतिश नमरूद में इश्क ने कूद छलांग मारी, अकल कैलकुलेशन में लगी हुई है, तो कौन सी अकल लगी हुई है, अकल अय्यार लगी हुई है, अकल उबिदु बिहर रहमान लगी हुई है, बाहर चले डीपली नहीं जाते ज्यादा। अच्छा, कुछ जो है गैर मुसलमानों में भी ये मसला है, मैंने क्रिश्चियनिटी की मिसाल दे दी, इससे हट कर भी मसलन सेंस या हिस का स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट है, फिफ्थ सेंस का स्कूल ऑफ थॉट, यानी वो कहते हैं कि एक्चुअल जो डिस्कवर करती हैं चीजों को और समझती हैं, इदराक करती हैं, वो कहता है हिस है, जो कुछ देती है वो असल में हिस देती है, सेंस के थ्रू जो है सेंस क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करके अकल को देती है, अकल सेंस की दी हुई गैदर की गई इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी जो है रिसर्च करके कैलकुलेट करके उसको टैली करके आपस में रिजल्ट निकालता है, ये है अभी भी है, अभी भी ये सोचे मौजूद है। अच्छा, अब आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है आप लोगों के लिए, इस्लाम के नजरिए में अकल हुज्जत है, हुज्जत है मतलब क्या, जैसे पैगंबर हुज्जत है, इमाम हुज्जत है, कुरान हुज्जत है, वही हुज्जत है अकल। अच्छा, दोनों में फर्क जरूर है, अकल की हुज्जतिया हुज्जत मुस्तकिल नहीं है, इसमें नहीं जाते ज्यादा, नबी ये बातिन कहा है, अकल की सही कैलकुलेशन और इंकशाफात को काबिल भरोसा और काबिल एतमाद कहा गया है हमारी दिन में, हमारी हदीसों की किताब में उसूल काफी की पहली जो जिल्द के अंदर जो चैप्टर है नंबर 1 है वो किताब अकल है। खूब, अकल हमारे चार जो रिसोर्सेज हैं हमारे जिससे हम मजहब को हासिल करते हैं और समझते हैं, उनमें से एक अकल है। खूब, ये अकल कौन सी है, कहाँ तक है, इसका लेवल कितना है, वही के मुकाबले में इसकी क्या स्टेजेस हैं, ये आगे शहीद डिस्कस करेंगे, और उसी वक्त हम भी आउट ऑफ बुक जाकर डिस्कस करेंगे कि आज भी बहुत सारी चीजों में आउट ऑफ बुक हम जरूरत के हिसाब से गए हैं। अच्छा, दूसरा जो इसके अंदर एक आता है, कहते हैं जनाब देखें ये अकल जो है ना, ये जो आप बातें कर रहे हैं ये अकल नहीं, ये परफेक्ट मैन और उसकी और ये नहीं कर सकती है इसको, फिर क्या है जी इश्क, یعنی عرفان, عشق یعنی وہی عرفان کا سکول آف تھاٹ, عرفانیات کے ذریعے ہوتی ہیں جی اصل حقیقتیں, تو اس کے ذریعے کمال انسانی عشق میں ہے. ایک انسان کامل کا مطلب وہ جو ایک انسان عاشق, ایک انسان عارف یعنی عاشق خدا, یعنی یہ جو عشق ہے یہ ورٹیکل مومنٹ کے ذریعے سے ورٹیکل ہی ہے, عمودی طور پر ہوتا ہے, کیونکہ اصل بات عقل و فکر کی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ روح کا اور روحانیت اور معنویت کا ہے. آپ میں سے بہت سوں کے لیے یہ باتیں کنفیوژن کے سبب ہو سکتی ہیں, تو میں گزارش کروں گا, کیونکہ ہم نے سطر بائی سطر اور لائن بائی لائن نہیں پڑھنا ہے پہلی کلاس کے بچوں کی طرح, اور ماشاءاللہ آپ سب انٹلیکچوئل ہیں, میں چاہوں گا لیکن پلیز اس چیپٹر کو پڑھ لیجئے گا, ورڈ بائی ورڈ پڑھ لیجئے گا, جہاں کنفیوژن ہو تو مجھے اگلے سیشن میں بتا دیجئے گا, کیونکہ ہم بہت ہی وہ ہمارے مولانا صاحب کے طرح کرٹیکل قسم کی سچویشن میں ہیں اس مسئلے کے اندر. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے میری انٹرپریٹیشن میں کوئی ایسی خامی ہو جائے جس کی وجہ سے کسی سننے والے کے لیے کنفیوژن کا سبب بنے. مکتب عشق کیا کہتا ہے؟ اسکول آف تھاٹ آف عرفان اینڈ عشق کہتا ہے, جناب اصل بات تو عقل کی ہے ہی نہیں نا, عقل و فکر کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں, بس روح کی بات ہے نا, روح کی طہارت, نفخت فیہ من روحی, معنویت, روحانیت, یہ مسئلہ ہے اصل میں, کیونکہ روح کا تعلق اللہ سے ہے, لہذا وہ عاشق اللہ ہے, اور عاشقانہ اللہ کی جانب ہمیشہ یہ روح حرکت میں رہتی ہے. یہ جنگ شروع ہو جاتی ہے یہاں سے کہ صوفیوں اور عقل کے اسکول آف تھاٹ کے درمیان ہسٹری میں یہ جنگ رہی, اور یہ جنگ سٹل کم و بیش اسلامک دنیا میں اور غیر اسلامک دنیا میں بھی کم و بیش یہ جنگ موجود ہے ابھی بھی. اسلامی پوائنٹ آف ویو اس کے اندر واضح ہے, ہمارے لیے کلیئر ہے کہ ایسی کوئی جنگ موجود نہیں ہے, یہ جنگ صوفیوں اور ان لوگوں کی چھیڑی گئی ہے جنہوں نے عقل کی ڈیفینیشن صحیح کا طور پر نہیں کیا ہے, جنہوں نے عرفان معنویت اور روحانیت کی غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. یہ پرابلم اصل میں فٹ پاتھ پہ بیٹھے باباؤں اور ان لوگوں کی کریٹ کی گئی ہے, وہ جو کٹھیے بنا کر اپنے آئسولیٹڈ کر کے جو فقیر و شقیر کے نام سے لوگ ہوتے ہیں, جن کو ہم روحانی لوگ سمجھتے ہیں, جن کو ہم مانوی, یہ ان کی پیدا کردہ ہے, یہ اس پوئٹری کا نتیجہ ہے جو ہمارے پاس بعض لوگوں کی موجود ہے, جس میں ہمیشہ عقل کی مذمت اور عقل پسندی کی مذمت کی جاتی ہے, یہ ان لوگوں کی کریٹ کردہ ہے جو چالاکیوں کو, مکاریوں کو, دھوکہ دہی کو, فراڈ کو عقل مندی, ذہانت, قابلیت پر جو ہے فٹ کرتے ہیں اور اس طرح کی انٹرپریٹیشن دیتے ہیں, حتیٰ کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں داخل ہو چکی ہیں اور ہم جو ہے فراڈی چالاک بندے کو عقل مند کہتے ہیں اپنے گھر کے اندر, اور یہی چیزیں بچپن سے ہمیں ٹیچ کی جاتی ہیں, جس طرح کہ ہمارے ہاں تقوی پرہیزگاری اور اس کی ایک ڈیفینیشن ہے, عبادت و غیر عبادت کی ایک ڈیفینیشن غلط طریقے سے آئی ہے, اس طرح ہے. شہید کے کچھ جملے ہیں, پیج نمبر میرے پاس کتاب میں 145 ہے, اس میں فرماتے ہیں, یہ وہی مکتب ہے جس کے پیرو کامل انسان کے لیے, انسان کے کمال تک پہنچنے کے لیے عقل کو کافی نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں عقل انسان کے وجود کا ایک جز ہے, انسان کی عقل اس کی پوری ذات پر محیط نہیں ہے, عقل آنکھ کی مانند ہے, یہ محض ایک آلہ ہے, ایک ٹول ہے. حالیہ دور میں بریسٹون نے بھی اس بات پر بہت اعتبار کیا. اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں, میں نے مثالیں دے دی اپنے سوسائٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل یورپ میں یہ سوچ, اہل یورپ میں بھی ہیں یہ سوچ رکھنے والے, اہل یورپ میں ابھی موجود ہے باقاعدہ, اسپیشلی ان امریکہ باقاعدہ لوگ موجود ہیں روحانیت کے نام پر جو عقلانیت کی نفی کرتے ہیں, آج بھی ایک بڑی تعداد ان کی موجود ہے. اب یہ اس سے آگے جاتے ہیں پھر ڈرگز اور اس طرح کی چیزوں میں گئے ہیں, ایپیزم اور اس طرح کے اور بھی مثلاً ایزمز موجود ہیں. لاسٹ ٹائم ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا نیٹ فلکس کے اوپر, اس میں جو ہے کچھ وہاں کے کب ایسے افراد اور گروہ دکھا رہے تھے امریکہ, میں حیران ہو گیا ہوں ان کو دیکھ کر, میں نے کہا آج کے دور میں بھی یہ سوچے ہیں انسان, میں نے اسی لیے کہا مشینوں کی ترقی, عمارتوں کی ترقی, سڑکوں کی ترقی انسان کی ترقی نہیں کہلاتی ہے, ہماری مشینوں نے ترقی کی ہے, ہم نے ترقی نہیں کی ہے, हमारी तरक्की इस तरह की तरक्की नहीं होती जो कि मशीनों और आलात की तरक्की को हम तरक्की कहें। हमारी अक्ल की तरक्की नहीं हुई है, हमारी किरदार की तरक्की नहीं हुई है, वगैरह 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 वगैरह। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन के अंदर हमने जहानत डालने की कोशिश की है, अपने अंदर वो जहानत जो हकीकत को दर्क करे और पहचाने खुद के, अपने वजूद के, अपने खालिक के, अपने खुदा के, और इंसान को कमाल की तरफ ले जाए, वो नहीं अभी हमारे पास। हम उस मसले में दुनिया के लिए बहुत सारे टाइम की जरूरत है कि वो इन चीजों को सीख ले। शहीद फरमाते हैं एक ऐसा जौहर है, यानी कहते हैं जी जात और इंसान का जौहर अकल नहीं बल्कि रूह है, रूह का ताल्लुक की दुनिया इश्क से है। एक ऐसा जौहर है जिसमें खुदा ताला की जानिब हरकत के अलावा और कोई चीज मतलूब ही नहीं है, सिर्फ रजा खुदा चाहे। यही वजह है कि इश्क के मुकाबले अकल हकीर होकर रह जाती है। इस मकतब के पैरो इश्क को मस्ती को अकल पर तरजीह देते हैं, इसीलिए जब कहते हैं ना कि इश्क को मस्ती आ जाती है तो फिर अकल नहीं सोचता है। इसलिए हमारा कहता है जी फला इमाम मासूम के इश्क में होकर जो है हम ये जंजीर मारते हैं, तो सर पे तलवार मारते हैं, तो छुरियां मारते हैं, तो पत्थर उठा के मारते हैं, तो ये करते हैं और वो करते हैं। क्यों? हम इश्क को जज्ब उसकी मस्ती में है जी, उस कैफियत में हम लोग हैं। ये पहले समझते हो इश्क को जज्ब और क्या कहते हैं इश्क को मस्ती और जज्ब को समझते भी हो, मतलब क्या है इसका, उस मानवी कैफियत को समझते भी हो, या ऐसे ही दो जुमले सुन लिए किसी से तो उसको पकड़ कर दूसरों को ये कहना शुरू कर दिया। जैसा कि हाफिज शिराजी के बाद अशार में आया है, उनके यहाँ तौहीद के माने कुछ और हैं। जाहिर है अब डिफिनेशन वो अपने स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से करेंगे ना, हर चीज की डिफिनेशन अपने स्कूल ऑफ थॉट से करते हैं। कायनात, खुदा, इंसान, वजूद, कमाल, ये सारी चीजें डिफिनेशन वो अपने स्कूल ऑफ थॉट से करेंगे। जैसे मेटेरियलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट हर चीज की डिफिनेशन, एजुकेशन, तरबियत, बच्चा, औरत, मर्द, जमीन, जमान, मौत, हयात, खुदा, सारी चीजें क्या है उसी स्कूल ऑफ थॉट से दे देंगे, करेंगे। ये कोशिश अभी हो रही है, नहीं हो चुकी भी ऑलरेडी, हम भी उसके लाशूरी तौर पर मुतासिर हो चुके हुए हैं। जो साइंटिस्ट है वो हर चीज को उसी साइंसी नुक्ता नजर से डिफिनेशन देता है। अभी देखें ये जो बिग बैंग का मसला है, मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो भी रिकॉर्ड की और अभी कुछ और चीजें आने वाली हैं जो क्वांटम क्या है उसके हवाले, थ्योरी के हवाले से भी, तो उसमें आप देखें ना कि वो कायनात की डिफिनेशन उसी से करता है। बिग बैंग हुआ था, ये हुआ था, ये खुदा लाने की वो नहीं है, खुदा के पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो अभी भी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी गैर खुदाई वजह, गैर खुदाई सबब। हर स्कूल ऑफ थॉट यहां पर भी ऐसा है, वो स्कूल ऑफ थॉट किसी तरह करता है। मसलन मैं नाम नहीं लेता, किसी मुज्तहिद से सवाल किया शुरू में, अलबत्ता अभी उस मुज्तहिद के फतवे बदले हैं, वैसे तो वो फतवे सुबह शाम बदलते रहते हैं, माजरत के साथ, तमाम तर रिस्पेक्ट और एहतराम के साथ। लेकिन जाहिर है कि जब आप फतवा देंगे तो उसके बाद हक हासिल है कि हम कमेंट्स करें। वो किसी ने जाके उनसे आज से कई साल पहले एक काफिला जाके उन्होंने कहा कि ये हम कमें करते हो, तो उन्होंने बड़े जुमले कहे, इश्क हुसैन में ये करना, जज्ब उसकी मस्ती में करना, ये कोई वो नहीं, मुस्ताब फलाने। बाद में 100% उनका फतवा बदला और उन्होंने शर्त लगा दी कि मजहब की तोहीन हो रही हो, जान का खतरा हो वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह की हर चीज को फिर अपने फिक को भी अपने स्कूल ऑफ थॉट से वो करने लग जाते हैं, इंटरप्रिटेट करने लग जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। फरमाते हैं अगर इंसान वहां तक पहुंच जाए तो हर चीज को हकीकी शक्ल में अंदर अपने अंदर पाता है। ये बातें सही है, ये जो बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही है, कशफियात हो रही है ना उसके लिए। बलाखरा एक और मसला पैदा होता है, इंसान इंसान भी है और खुदा भी है। अल्लाह अकबर। इस मकतब के मुताबिक एक कामिल इंसान आखिरकार नऊज बिल्ला खुदा बन जाता है। सूफी कहते हैं ये, इन्हें ये जो फना फिल्ला का कंसेप्ट है, कहते हैं फना होने के बाद दो वजूद नहीं रहते, एक ही वजूद रहता है। सही है, मैं नहीं इसको डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझ रहा हूँ इससे वो रिजल्ट क्या ले रहे हैं या रास्ता क्या दिखा रहे हैं, वो अहम है। फना फिल्ला मतलब क्या है कि वो एक वक्त में पहुंचता है इरफानियात में और हकीकत भी, कि वो इंसान एक वजूद होता है, दो वजूद नहीं होते, फिर जमीन नहीं होती, जमान नहीं होता, इंसान खुद भी नहीं होता। वो कहते सिर्फ अल्लाह है, हर तरफ अल्लाह है, एनमा तबल्लु फसम वजहुल्लाह, जिस तरफ देखो कुरान मजीद में कहा अल्लाह ही अल्लाह है हकीकत में, बाकी सारी चीजें मजाज हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। کیونکہ ان کے نزدیک حقیقی کامل انسان خود خدا ہے، اور ہر وہ انسان جو کامل انسان ہو جاتا ہے وہ خود فنا ہو کر خدا سے متصل ہو جاتا ہے، فنا فی اللہ ہو جاتا ہے، وجود گم کر دیتا ہے، ایک ہی وجود بن جاتا ہے۔ کامل انسان کے بارے میں ایک اور نقطۂ نگاہ بھی ہے جو نہ عقل پر تقیہ کرتا ہے، نہ عشق پر، عرفان پر یا صوفیزم پر، بلکہ وہ فقط قدرت پر تقیہ کرتا ہے۔ قدرت یعنی طاقت، پاور جس کو ہم کہتے ہیں، پاور پر۔ اس سکول آف تھاٹ میں کامل انسان کے معنی یعنی طاقتور انسان، مقتدر انسان، مقتدرہ حلقے جس کو کہتے ہیں، مقتدر، طاقتور، قدرت مند انسان، ان کے نقطہ نظر کے مطابق کمال کے معنی طاقت اور قدرت کے ہیں، یعنی اقتدار، زور۔ پھر جس معنوں میں بھی آپ قدرت کو لے لیں، قدیم یونان میں کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں سوفسطائی، سوفسٹ جس کو کہتے ہیں، انہوں نے اپنا یہ نظریہ بڑی صراحت سے بیان کیا اور کہا کہ حق کے معنی ہیں اور زور، حق کے معنی ہیں طاقت، زور، اور جہاں کہیں پر بھی طاقت ہے وہ حق ہے۔ میں وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اسی صفحے پر، پیج میرے پاس 146 ہے، یہاں پر رک جاتے ہیں اور میں ایک اشارہ کر دوں، یہ صرف سوفسٹ یا سوفسطائیوں کا نظریہ نہیں ہے، ہمارے اہل سنت دنیا میں ابھی بھی ایک نظریہ موجود ہے، اگر کوئی بھی شخص طاقت کے ذریعے سے اقتدار پر قبضہ کر لے تو اس وہ حاکم شرعی ہے اور اس کی اطاعت کرنا فرض ہے، اس کی اطاعت کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے۔ یہ نظریہ اگرچہ زیادہ تر اہل سنت نہیں مانتے، اس نظریے کو ابھی تبدیلی آئی ہے، لیکن اب بھی ان کی یعنی ریلیجس پولیٹیکل جو انٹرپریٹیشنز اور جو بیسز ہیں اس کے پیچھے اب بھی یہ موجود ہے۔ اسی لیے آپ اگر ذرا غور کریں، اپنے ڈکٹیٹرز کی اس تقریروں کو ذرا دیکھیں، تو اس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی، خاص کر ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے اسی پوائنٹ آف ویو کو سامنے لایا تھا۔ اسی طرح جو سعودی بادشاہوں کی تقریریں ہیں، اگر آپ کے نظر سے یا اس سے کبھی سماعت سے گزرتی ہیں، اس کا ترجمہ وغیرہ، تو اس میں وہ یہی کہتے ہیں، ولی امر کا لفظ یوز کرتے ہیں، ولایت الامر و ولی امر، وہ شرعی پوائنٹ آف ویو سے کہتے ہیں نا، کیونکہ بادشاہ نے قبضہ کیا ہوا ہے اقتدار پر، لہذا اصل کمال طاقت اور قدرت پر ہے، کیونکہ اسے طاقت اور قدرت حاصل ہو چکی ہے، اس کے پاس قوت آ چکی ہے، لہذا اس کے سامنے کسی طرح کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ طاقت و قدرت کو حاصل کرنے کے بعد کمال انسانی کو پہنچ چکا ہے، لہذا اس کے کمال کے مقابلے میں غیر کامل، غیر مکمل انسان کیوں اس کے سامنے جا کر اس کی اپوزیشن میں کھڑا ہو جائے، یہ تو کوئی درست کام نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کامل انسان کے بارے میں کیا کیا نظریات ہیں، کیا کیا سوچیں ہیں، اور ان سوچوں سے یقیناً ہم اور آپ کی دنیا متاثر ضرور رہتی ہے، ہم اور آپ بھی جانے انجانے میں متاثر ہو جاتے ہیں، باتوں سے، شعر سے، تقریروں سے، خطابات سے، جملوں سے، ایجوکیشن سے، ہمارے بچے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو ڈیپلی پڑھنا بہت ضروری ہے، خاص کر وہ لوگ جو یورپ میں رہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے، بہت بہت سلامت رہیں، 2-3 منٹ میں نے زیادہ بھی لے لیے۔